स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, और इस अध्याय में ये जो प्रसिद्ध श्लोक आज भाग तीन है, शायद तीन है भाग तीसरा, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गति कर्मणो यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मणो यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हमने पिछले श्लोक से इस श्लोक का संबंध समझा हमारे पिछले दो सेटिंग्स में, कि जहां पर भगवान कर्म अकर्म और इसके पश्चात अब विकर्म की व्याख्या भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि ये कितना गहन विषय है, कितना गहरा है ये विषय, या कितना क्लिष्ट, कितना जटिल है, और उसके साथ साथ ये विषय समझना अति आवश्यक है। इसलिए तीन दफा भगवान ने बोद्धव्यम 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 इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से चल रहे हैं पिछले दो सेटिंग से, तीन प्रकार के कर्म, बोद्धव्यम, गहना और गति शब्द की व्याख्या। तो ये जो कर्म का नियम है, जैसे कि पिछले दफा हमने ये प्रश्न पूछा था कि क्या कर्म का नियम ये भगवद गीता का ही सिद्धांत है केवल, या चाहे कोई किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, क्या कर्म के नियम केवल हिंदुओं के ऊपर लागू हैं? नहीं। जैसे कि सूर्य, न तो वो हिंदू सूर्य है, न वो मुसलमान सूर्य है, न वो क्रिश्चियन सूर्य है। हां, ये हो सकता है कि भाषा में उसी सूर्य को अलग अलग तरीके से उल्लेख कोई करता होगा, परंतु वस्तु वही है। तो वैसे ही जैसे कि क्रिश्चियन धर्म में वो कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप, हिंदी में हम क्या कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। कर्म का नियम वही है, भाषा बदल गई है, हो सकता है कुछ उदाहरण अलग से वो देते हो, परंतु नियम वही रहता है। तो ये जो अथाह भव सागर है, हम कहते हैं ना कि ये भौतिक संसार एक सागर है, संसार सागरम, अलग अलग उपमाएं दी गई हैं। तो ये सागर, जैसे कि एक समंदर किससे बना होता है, जल, वो भी खारा जल। तो ये भवसागर बना हुआ है हरेक जीव के कर्म और उसके कर्म के परिणाम से। दिस मटीरियल ओशन इज मेड अप ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ ईच लिविंग एंटिटी, स्पेशली ह्यूमन बींग्स। अब देखिए कि कितना विशाल ये भवसागर होगा, क्योंकि एक जीव, उसके कितने कर्म होते हैं और कितने कर्मों के कितने परिणाम होंगे, और ऐसे अनगिनत जीव, उनके अनगिनत कर्म और उनके परिणाम, इनसे बना हुआ है यह भवसागर। तब इससे एक और बात क्या समझ में आती है, इससे एक और बात यह समझ में आती है कि यदि मेरे स्वयं के कर्म और कर्मों के परिणाम का कोटा इतना है इस समंदर में, तो फिर जो अन्य मुझसे संबंधित हैं या अन्य मनुष्य या जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं उनके जो उनके कोटा के कर्म और परिणाम, वो पानी मुझे भी तो लगेगा। यदि समंदर की उपमा दी गई है तो मेरे स्वयं का पानी, मेरे कोटे का पानी, और फिर मेरा जो परिवार वाला है उसके कोटे का पानी, फिर मेरा जो पड़ोसी है उसके कोटे का पानी, ऐसा जिस समाज में मैं रह रहा हूं उन सब का पानी, वो सब भी मेरे को गीला कर रहा है। विच मीन्स वी आर नॉट सिंपली अफेक्टेड बाय वन्स ओन कर्म विकर्म अकर्म, बट वी आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय अदर्स कर्म विकर्म। उनसे भी हमको अलग अलग क्लेश परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो जैसे हमने चर्चा की थी कि ये मनुष्यों के लिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ता है उसके साथ साथ एक कुत्ता भी वो ट्रैफिक लाइट तोड़ते हुए भाग रहा है, जो हवलदार है वो रिसीट किसके लिए काटेगा, जाके कुत्ते के पीछे नहीं बैठ कैसे ट्रैफिक लाइट तोड़े। हाँ, और वो अगर हवलदार को डिमांड करे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, उसने भी तो तोड़ा ही, उसको क्यों नहीं पकड़ते। तो जैसे ट्रैफिक लाइट का नियम किसके लिए है, कुत्ते के लिए नहीं है, उसके मालिक के लिए है, वैसे ही कर्मों का नियम हम मनुष्यों के लिए है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे शुरुआत होती है, ये प्रश्नावली से शुरुआत होती है हमारे मनुष्य जीवन की। जब तक कोई मनुष्य ये सारे प्रश्न नहीं पूछता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी स्थिति क्या है, मैं किससे बाधित हूं, समय का प्रभाव इत्यादि, कर्म का नियम, ये सारे प्रश्न जब तक कोई मनुष्य नहीं पूछता तब तक वो मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं। तो कर्म का नियम, कॉज एंड इफेक्ट थियरी, सुना आपने यदि स्कूल में साइंस में पढ़ा होगा कॉज एंड इफेक्ट थियरी, कि जब भी आप किसी परिणाम को देखते हो तो अवश्य ही उसके पीछे उसका कारण निश्चित है। यहां पर ये पंखे लाइट ये सब कुछ जल रहे हैं, ये सब क्या है, ये इफेक्ट दिख रहा है, परंतु इसका कॉज कहां पर है, वो एक लारा वहां पर, वहां पावर जो हाउस है वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी यहां तक आ रही है, तो अभी हम लोग यहां पर इफेक्ट देख रहे हैं। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति जान जाएगा कि इसका कॉज कहां पर है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो केवल इफेक्ट में नहीं जिए कि हाँ मेरे जीवन में जो जो इफेक्ट हो रहा है बस भोगता फिरूं उसको, कॉज जानने की कारण जानने की कोशिश कीजिए। इसलिए अक्सर लोग ये जो कर्म का सिद्धांत है इसमें भ्रमित कब हो जाते हैं कि अभी तो मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म किया हो जिसके वजह से मुझे लकवा हो गया या फिर मुझे बीमारी हो रही है या फिर मैं पतला हूं मोटा हूं गंजा हूं ये हूं वो हूं, ये सब अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हर एक कर्म वो अपना समय लेता है। जैसे कि आप खेती में देखिए, मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना, मस्टर्ड सीड्स, सरसों को आप बोइए, कई बार आप देखोगे सरसों 7 दिन में उग जाते हैं वो पौधा, और नारियल का पेड़ लगाइए, नारियल आते आते कितने वर्ष बीत जाते हैं तब जाकर नारियल उसमें से उगेंगे। तभी कोई कहेगा वही भूमि, वही किसान, वही मिट्टी, वही जल, वही सूर्य, ये क्या सिद्धांत है कि सरसों 7 दिन में और नारियल उसको 7, 10 साल, 50 साल भी लग जाते। तो ये मनुष्य जीवन हमारा ट्रेन जंक्शन के समान है, जैसे कि एक ट्रेन जंक्शन में गाड़ियां यहां वहां से जुड़ती हैं, उनका गंतव्य स्थान जुड़ता है, उसी प्रकार से हम मनुष्य हमारे इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा गंतव्य स्थान निर्धारित होता है। और ये जो जो हमारे कर्म हैं उसके अनुसार हमारा गंतव्य स्थान। गुड एंड बैड कर्मा डू नॉट कैंसिल ईच अदर, ये हमने महत्वपूर्ण ये प्रश्न लिया था कि अक्सर लोगों को ये प्रश्न उठता है कि ठीक है, हो सकता है या है कि मैंने बहुत से बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म, तो मुझे तो आप याद दिला नहीं रहे कि कौन से किए थे, तो चलो मैं अपने से पुण्य कर्म करता रहता हूं तो उसको कैंसिल करते रहो ना। फिर आपको याद है पिछली बार हमने एक उदाहरण लिया था, हाँ हरी बोल, जैसे कि एक दूसरा उदाहरण लेते, कोई बात नहीं। परीक्षा में विद्यार्थी फेल हो गया, आंसर शीट में उसने जो भी लेटेस्ट मूवी जो देखी थी उसकी कहानी लिख दी, उसने फेल हो गया। वो प्रिंसिपल के पास जाता है, बोलता है सर देखो आपने मुझे फेल किया। अच्छा सबसे पहला ये जो ये वाक्य गलत है, प्रिंसिपल ने फेल किया, ठीक है अगर ये भी कोई मान ले कि प्रिंसिपल ने फेल किया, तो वो अगर प्रिंसिपल को कहे सर जिस दिन एग्जाम था आपने मुझको देखना चाहिए था, मैं सबकी मदद कर रहा था, बाकी विद्यार्थियों की मैं मदद कर रहा था, किसी को प्यास लगी थी उसके लिए पानी लेकर आ रहा था, किसी को सप्लीमेंट चाहिए था मैं जाकर लेकर आ रहा था, तुम टाइम वेस्ट मत करो तुम लिखो मैं लेकर आता हूं, उनको समय देखना था मैं बड़ी घड़ी लेकर खड़ा था समय देखते रहो पानी लेकर आना, इतना सब इतने सारे अच्छे काम कर रहा था मैं, पास नहीं करोगे मुझे? आप प्रिंसिपल अगर हो आप क्या बोलोगे बच्चों, अरे बड़ा नेक बच्चा है, हाँ ऐसे निस्वार्थ भाव से चलो चलो इसको पास, इसको ज्यादा मार्क्स। तो प्रिंसिपल बोलेगा ठीक है भाई तेरी नियत अच्छी लगी मुझे कि तू दूसरों को मदद कर रहा है, लेकिन पास तो तुझे होना है। वैसे ही जब कोई ये प्रश्न पूछता है कि मैं अभी नेक हूं तो कर्म का नियम पूछता है, लेकिन जो परीक्षा में फेल तू हो रहा है उसके बारे में क्या कर रहा है? जो प्रश्न तेरे को दिए गए हैं सुलझाने के लिए उसके लिए तो तू कुछ नहीं कर रहा है, बाकी पानी पिलाते फिर रहा है, सप्लीमेंट लाते फिर रहा है, घड़ी दिखा रहा है, ये वो जो करना है उस एग्जामिनेशन हॉल में वो नहीं कर रहा और बाकी सारी चीजें ये करता फिर रहा है। तो इसलिए हमने पिछली बार लिया था कि ये कर्म का नियम क्या है, नियम हम इसके बाद देखेंगे, ये नेचर ये स्वभाव कर्म का, कि जैसे ये सारे उदाहरण हमने लिए थे, वन साइडेड कॉइन, एक सिक्के के हर समय दो पहलू होते हैं, फिर अग्नि बिना धुएं के नहीं हो सकती, कोई अगर तैरने जाए और ये प्रश्न पूछे कि मुझे गीला नहीं होना है, गीला क्यों हो गया मैं, देयर इज नो ड्राई स्विमिंग, इजी एक्सरसाइज ये भी कुछ नहीं है, पीसफुल वॉर ये भी एक असंभव सा वाक्य है, और प्लेनलेस चाइल्ड बर्थ। इसलिए अंग्रेजी में कहा जाए देयर आर नो फ्री लंचेस इवन इन इस्कॉन। आपको लग रहा होगा हर बुधवार को आपको मुफ्त में डिनर खिलाया जा रहा है, नहीं, बिल पहले भर रहे हैं आप, डिनर से पहले इधर बैठना है, सुनना है, और चाहे इधर बैठो भी नहीं तो भी इधर उधर घूमते फिरते भी मिलेगा नहीं आपको, चाहे कितनी भी परिक्रमा आप लगा लो मंदिर की, और फिर यहां वहां सब जगह आपको सुनते रहना पड़ेगा। देयर आर नो फ्री लंचेस। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, यदि सत्संग चाहिए तो समय खर्च करना पड़ेगा, यदि विश्वास चाहिए तो ईमानदारी खर्च करनी पड़ेगी। अरे लोग कहते हैं रिश्ते मुफ्त में आते हैं, इस संसार का नियम क्या है, एक सांस यदि अंदर लेनी है तो पिछली सांस भी छोड़नी पड़ती है, वो भी आपको बलिदान करनी पड़ती है, तब जाकर नई सांस अंदर जाती है। ये है इस संसार का नियम। तो और अब हम उदाहरण लेते हैं आज का जो हमारा सत्र है इसमें। सबसे पहला उदाहरण है बीज का। आपने अगर आम का पौधा लगाया है तो उसमें आम के फल ही आएंगे, उसमें संतरे नहीं उगने वाले, उसमें अनार नहीं उगने वाला। दूसरा उदाहरण बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रबर बैंड का उदाहरण। कोई रबर बैंड को खींच रहा है, होगा क्या एक पॉइंट पे, और रबर बैंड जब छोड़ोगे तो फिर से तुम्हारे ही हाथ पे वो लगने वाला है। तो जितना खींचोगे उतने ही तेजी से वो आएगा, लगेगा। सो कर्म इज लाइक रबर बैंड, द मोर यू स्ट्रेच द फास्टर इट विल कम एंड हिट यू बैक। कैमरे का उदाहरण है, जो तस्वीर खींची है आपने कैमरे से, कैमरा वही दिखाएगा। यदि आपको आपकी तस्वीर अच्छी दिखनी है तो शक्ल सुधारो, हाँ, नए पिक्सल का कैमरा लेने से शक्ल नहीं सुधरने वाली। कोई अगर कहे कि शायद कैमरा फोन अच्छा नहीं है मेरा, तो उसका मेगापिक्सल बढ़ा कर लेता हूं, तो बदसूरती और क्लैरिटी से दिखेगी फिर। इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि कैमरा और आईना वो झूठ नहीं बोलते, वो झूठ नहीं बोलते। हां, आजकल टेक्नोलॉजी से आप फोटोशॉप कर सकते हो। उसमें क्या किया आपने, उसमें आपने हेरा फेरी की है। फोटोशॉप मतलब हेरा फेरी की है, जो एक्चुअल शक्ल है उसमें हेरा फेरी की है। अच्छा, वो भी नहीं, आजकल तो फिर ब्यूटी पार्लर में जाकर वो भी अलग तरीके की हेरा फेरी होती है, ज्यादा नहीं बोलेंगे आजकल। अच्छा, होटल फूड, कोई बंदा गया है होटल में, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, मेनू में जाइए, सब कुछ अच्छा लग रहा है उसको। अच्छा, उसको प्रेम से वो जो वेटर है वो खिलाया जा रहा है, हाँ खाइए, ये भी खाइए, वो भी खाइए, लेकिन एक गल्ले पे कोने पे बैठा हुआ है एक बंदा, ऐसा लगता है कि उसको कोई सरोकार नहीं, कस्टमर कौन आ रहा है जा रहा है, और कई बार कस्टमर को दिखता भी नहीं कौन है, गिड्डा सा होता है, बैठा रहता है, देखता है, लिखता है, वो बनाता रहता है, अच्छा इसका ये बिल, इसका वो, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन दिखता नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन किससे दिख रहा है, खाने से दिख रहा है, और इतने सारे जो आइटम आ रहे हैं उससे दिख रहा है। हमारे बंबई में है मदन मोहन प्रभु, उनका हिंद माता रेस्टोरेंट है बॉम्बे सेंट्रल। तो एक बार वो बता रहे थे कि कैसे लोग चकमा देते हैं, किसको, जो वहां पर बैठा हुआ है गल्ले पे, जो बैठा उसको कैसे चकमा देते हैं। तो बता रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति, वो गेट से जो लग के अंदर की बेंच थी सीट, उस पे बैठा हो, पूरा खा पी लिया और फिर गला साफ करने के लिए, जैसे कि बलगम आया गले में, गला साफ करने के लिए अब इधर उधर देख रहा है, तो सब लोग देख रहे हैं उसको, अभी ये गला कहां साफ करेगा? तो बाहर गया, सब लोग बोले ठीक है बाहर थूक के आएगा, गया थूकने के लिए, गया। तो उसके बाद से वो लास्ट बेंच पे, जो गेट के पास वाली बेंच, वहां पर जो भी बैठता, जैसे ही होने के बाद अगर उसने गला साफ किया तो सारे वेटर उधर खड़े हो जाते, बेटा उधर जा, उधर अंदर अंदर वहां पे वो वॉश बेसिन है, वहां साफ कर जो भी करना है, तो हम तेरे को अभी साफ करते हैं। एक ने भिखारी, भिखारी को लेकर आया वो रेस्टोरेंट में कि तेरे को मैं खिलाता हूं, पता नहीं वो भिखारी बोल रहा था साहब खाया नहीं इतने दिन से, भूख लगी, चल चल तू आ, चल मैं तेरे को खिलाता हूं। तो भिखारी को उधर ही बिठाया अपने सामने एक ही बेंच पे, ये इधर बैठा है सामने भिखारी, जो खाना है खा। तो भिखारी एकदम खुश हो गया, खा रहा है, इसने भी अपना ऑर्डर कर दिया, जो जो भिखारी खा रहा है उससे भी ज्यादा ये भी खा रहा है। अब यहां पर इनको पता नहीं कि बिल कौन भरने वाला है, तो ये खा पी लिया अपना पूरा, भिखारी को बोलता है तू बैठ, मैं आता हूं बिल भर के आता हूं। भिखारी अपना बस लास्ट का सब सौंफ वौंफ सब खा रहा है, एकदम तृप्त हो गया कि चलो ऐसे दानवीर कहां मिलते हैं आजकल। और फिर सारे वेटर सारे बोलते हैं कहां गया तेरा बंदा, कहां गया बंदा, वो बिल भरने गया ना, वो तो रफू चक्कर हो गया, बिल कौन भरेगा? अरे वो मेरे को लेकर, मैं तो भिखारी हूं। अब यहां पर प्रश्न है कि भिखारी कौन था? ऐसे ही एक बार एक होटल में, बड़ा आलीशान होटल था ये, जैसे वो 3 स्टार 5 स्टार होटल था, तो 3 मित्र, एक डॉक्टर, एक सिंगर और एक कथाकार प्रवक्ता, ऐसे 3 मित्र रूम बुक किया उन्होंने। और जब चेकआउट कर रहे थे तो बिल देखा 10,000 रुपए। उन्होंने कहा एक दिन के इतना 10,000 रुपए, इतना तो तुम बताए नहीं थे। तो उसने बिल के अंदर देखो, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, जकूजी, ये सब कुछ, सोना बाथ, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो उसने, हमने तो ये सब कुछ यूज ही नहीं किया, हम कहां स्विमिंग पूल में नहाने गए, हम कौन सा तुम्हारा जिम यूज किए, हमने तो कुछ भी यूज नहीं किया। तो मैनेजर कहता है सर अवेलेबल था, आप कर सकते थे, हमारी क्या गलती, हमने तो अवेलेबल कर दिया था, आपने क्यों यूज किया? तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने तीनों, कौन थे, एक डॉक्टर था, एक सिंगर था, एक कथाकार, तो तीनों अपने अपने बिल निकाले। डॉक्टर ने अपना बिल निकाला 7,000 का, सिंगर ने अपना बिल निकाला 10,000 का, प्रवक्ता ने अपना बिल निकाला 25,000 का। मैनेजर कहता ये क्या? बोलता ये हमारा बिल है, भरो। बोला मतलब? अरे मैं डॉक्टर हूं, ये सिंगर है, ये कथाकार है, तीनों ने हमारा बिल दिया, भरो, क्या मतलब है? अरे ये सब क्या, हमने थोड़ी कोई आप लोगों को ये सब करना, हम अवेलेबल थे, तुमने यूज नहीं किया, तुम्हारी गलती ना, मैं तो अवेलेबल था एज अ डॉक्टर, ये सिंगर अवेलेबल था, बोलते तो गा देता, ये कथाकार तो एवर रेडी रहते हैं, तो हम तो अवेलेबल थे, तुम्हारा जो लॉजिक है उसके अनुसार हम अवेलेबल थे, क्यों नहीं यूज किया? फिर ये जो आजकल हम सेलफोन यूज करते हैं, देखो सेलफोन में अगर एक नंबर भी इधर उधर हो जाता है, एक नंबर भी इधर उधर हो जाता है, जैसे मुझे अक्सर कॉल्स आते रहते हैं, ऐसे अननोन नंबर से कॉल आते हैं, अच्छा राजेंद्र, और मैं हर बार बोलता हूं भैया मैं राजेंद्र नहीं हूं। अच्छा राजेंद्र ही बोल रहे हैं ना, अरे बोल दिया नहीं हूं राजेंद्र। तो कोई इधर उधर एक नंबर घुमा देता है, देखो पूरा 10 डिजिट में अगर एक नंबर इधर उधर हो गया कॉल किसी और को चला जाता है ना। तो वैसे ही वो कभी मिस्टेक नहीं करेगा, अरे बाकी के 9 नंबर तो सही किए ना, हाँ बाकी के 9 नंबर और सोच के तो उसी को किया था ना, राजेंद्र को ही किया था ना, तो चलो राजेंद्र को ही लगा देते हैं। नहीं, वो सेलफोन कंपनी बोलेगी सही नंबर लगाना पड़ेगा, सबका अलग अलग नंबर है, वो नंबर आपको एक एक डिजिट बराबर वैसे ही उसमें डायल करना है, वैसे ही कर्म का नियम है प्रिसाइस, एक डिजिट यहां वहां, व्यक्ति बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, उसका परिणाम बदल सकता है। और ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमने एक बार हमारे रविवार की क्लास में भी सुनाई थी, लंच बॉक्स की स्टोरी। तो एक ऑफिस में 3 बंदे रोज अपना लंच बॉक्स खोलकर एक साथ लंच लिया करते थे दोपहर में 1 बजे। तो ये तीनों हर समय लंच बॉक्स खोलने से पहले इन तीनों का एक वाक्य होता था। पहला वाला बोलता था काश आज बैंगन की सब्जी नहीं होनी चाहिए, अगर बैंगन की सब्जी हुई तो मैं आज लंच नहीं करूंगा। वो खोलता है, बैंगन की सब्जी निकलती। दूसरा काश आलू की सब्जी आज नहीं होनी चाहिए, वो खोलता है आलू की सब्जी निकलती। तीसरा कद्दू की नहीं होनी चाहिए, वो खोलता है कद्दू की निकलती। ऐसे रोज ये लाइन वो लोग पहले बोलते हैं और वही सब्जी निकलती, बैंगन आलू कद्दू। फिर 1 महीना परेशान होने के बाद फाइनली वो तीनों डिसाइड करते हैं, महीने का अंतिम दिन है, डिसाइड करते हैं आज अगर बैंगन आलू कद्दू की सब्जी हुई तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और होता क्या है, वो लोग अपना टिफिन खोलते हैं और वही सब्जियां निकलती हैं, बैंगन आलू कद्दू, और वो लोग आत्महत्या कर लेते। अब तीनों एक साथ आत्महत्या किए, तो तीनों की जो पत्नियां हैं वो विवाह हो गई, विधवा हो गई, फ्यूनरल भी एक साथ हो रहा है, तो 2 पत्नियां रो रही हैं, परंतु 1 पत्नी वो रो नहीं रही, वो कंफ्यूज्ड दिख रही है। तो फिर जब पूछा गया तो पहली पत्नी कहती है काश वो मुझे बोल देते कि उनको बैंगन पसंद नहीं है, अरे मैं दूसरी सब्जी बनाकर दे देती, आलू बैंगन दे देती। दूसरी बोलती है अरे काश वो मुझे बोल देते कि उन्हें आलू पसंद नहीं है, मैं उन्हें बैंगन आलू बना कर दे। तो ऐसे ये 2 बैंगन और आलू वाली जो पत्नियां थी उन्होंने इस प्रकार से विलाप किया, काश वो बोल देते। लेकिन तीसरी वाली कंफ्यूज कुछ बोल ही नहीं रही है, तो उसको जब पूछा गया कि तेरे अंदर ये कंफ्यूजन क्या है, तू इतनी कंफ्यूज क्यों दिख रही है, उसने कहा मेरा कंफ्यूजन यही है कि मेरे पति खुद अपना टिफिन बनाते थे, पकाते थे और पैक करते थे, मतलब वो ही खुद कद्दू खरीद के लाते थे, कद्दू काटते थे, कद्दू की सब्जी खुद ही बनाते थे और खुद ही अपना टिफिन पैक करते थे। आप लोग भी कंफ्यूज हो ना, क्योंकि यही होता है हम लोगों के साथ, यही होता है कि हम ही हमारे अलग अलग इंद्रियों से, मन से, रिसोर्सेस से हम इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं हमारे कर्म के, उसका कुकिंग करते हैं, हमारे ही टिफिन में पैक करते हैं और फिर हम कंप्लेन करते हैं कद्दू की सब्जी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पत्नी थी ये कंफ्यूज्ड थी कि इन्होंने आत्महत्या क्यों की जब ये खुद ही पैक करते थे। सो वी कुक एंड मेक अवर ओन लंच बॉक्स। सो इफ यू डोंट वॉन्ट दैट सब्जी इन योर लंच बॉक्स, डोंट कुक, डोंट शॉप, डोंट फिल इन दैट लंच बॉक्स। अब देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जैसे हमारे राधा गोपीनाथ के एक ब्रह्मचारी, अब वो जब बॉम्बे टेम्पल ज्वाइन किए तो प्रोग्राम के लिए लोकल ट्रेन में पहली दफा, तो उन्होंने देखा लोकल ट्रेन आई पीक आवर्स में, तो ये अब फर्स्ट टाइम लोकल ट्रेन में सवारी करने वाले बॉम्बे के, तो ये शराफत से खड़े रहे कि सब लोग उतर जाएं, और वो खड़े रहे क्योंकि जितने उतरे थे उसे डबल भर गए। तो इनको लगा कि शायद ये ट्रेन में होंगे, अगली ट्रेन खाली आएगी। ऐसे करके तीन ट्रेन चार ट्रेन वो खड़े ही हैं, आधा घंटा 45 मिनट हो गया। फिर उन्होंने देखा कि ये एक बोगी में कोई घुसता नहीं है, ये लोग पागल है, बेवकूफ हैं सभी, उसके बगल वाले, उसके उधर वाले, इसके इधर वाले, इसमें घुसते हैं। तो मैं बताता हूं इनको बुद्धिमानी किसको बोलते हैं। अगली ट्रेन आती है, ये बोगी खाली, एकदम शहंशाह की तरह घुसे अंदर, खाली है पूरा, सब बैठ गए। वो कौन सा बोगी था? फर्स्ट क्लास का बोगी था। टीसी आया, टीसी ने पूछा टिकट दिखाया, टीसी ने कहा भाई ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। तो इन्होंने कहा अच्छा, ना मुझे नहीं पता था। टीसी ने बोला तो आरती उतारो, मुझे नहीं पता था, मतलब वहां वो स्ट्राइप्स था ना बाहर, वो स्ट्राइप्स मतलब वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है। बैठने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये जानना। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मैं वहां पे ड्राइव कर रहा था तो नाना चौक का सिग्नल जस्ट क्रॉस किया, वो रेड हुआ, ग्रीन से रेड हो गया। हमारे हवलदार जी महाराज, क्या महाराज? मैंने कहा क्या? सिग्नल तोड़ दिया। क्या क्या? सिग्नल दिखा नहीं। मैंने कहा सिग्नल दिखा तो आपने दिखे। एक और दफा ओपेरा हाउस में, वहां पे वो टर्न, हमारे कैनेडी ब्रिज के वहां का टर्न, तो जस्ट टर्न लिया तब तक वो ग्रीन था, जैसे ही टर्न लिया मैंने, गाड़ी टर्न की, लेफ्ट टर्न लिया, वो रेड हो गया। फिर से जैसे यहां पे वो हवलदार हमारे खड़े थे, हमारा साइड में लो गाड़ी। सिग्नल तोड़ा। मैंने कहा देखिए साहब, मैं जब टर्न ले रहा था मैंने देखा ग्रीन था, मैंने देखा रेड था, तो मैंने कहा देखो साहब, मैंने जब टर्न किया, मैं आपको सच सच बता रहा हूं कि वो ग्रीन था, मैं भी सच सच बोलता है, आई शपथ, झूठ बोलेगा क्या? मैंने देखा रेड था। मैंने बोला देखो साहब, मैंने कुछ देखा, आपने कुछ देखा, हम दोनों को ऊपर वाला देख रहा है। या धमकी देता है, अभी ऊपर वाले का धमकी देता है, इधर प्रवचन देता है गाड़ी के अंदर, जाओ जाओ जाओ। तो कहने का मुद्दा यह है कि हाँ, इधर उधर थोड़ा बहुत हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ये कह देना, जैसे कोई नरभक्षी होते हैं ना, कैनिबल्स जिनको बोलते हैं, तो नर भक्षी कोई अफ्रीका का आ जाए और नासिक शहर में नर भक्षण कर रहा है वो इधर उधर, हाँ लंच ब्रेकफास्ट डिनर वही चल रहा है, उसको जज के पास लेकर गए, तो जज पूछता है क्या चल रहा है भाई तेरा, ये कौन है तू? तो बोलता है मुझे क्या पता, अफ्रीका में तो हम लोग जनरली ये सब करते रहते हैं, भूख लगी तो यही चलता है। तो नहीं, मुझे नहीं पता था कि यहां पे रूल अलग है। तो जज बोलेगा ओह इसको पता नहीं था, जाने जाने इसको, इसको पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ अगेन इज नो एक्सक्यूज। तो इसलिए जैसे कि हमारे इंसान के बनाए हुए कानून इतने सख्त हो सकते हैं, तो फिर कर्म के नियम हम लोग कैसे ये एज्यूम कर लेते हैं कि यदि मुझे पता नहीं उसके बारे में या मैं जानना नहीं चाहता, ये ऐसे ऐसे सेशंस मैंने अटेंड ही नहीं किए। अगर कोई ये कहे कि भाई ये जो आप लोगों का जो गीतामृत का ये सेशंस है, जिसने अटेंड नहीं किया उसके ऊपर कर्म के नियम लागू नहीं होने चाहिए ना, जिसने अटेंड कर लिया बस अब उनके ऊपर तो सख्त लागू होना चाहिए, नहीं। तो अब एक महत्वपूर्ण स्लाइड है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कि हमारे जो डिसीजंस हैं, हम क्या कर्म करते हैं या क्या कर्म कर रहे हैं और आगे भी क्या कर्म करेंगे, ये चार इनकी आधारशिला होती है, चार कारणों की आधारशिला ये है। तो पहले आपको हम ये चारों बता दें और फिर हम एक एक पर चर्चा करेंगे। वी मेक अवर डिसीजंस बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस कल्चर लॉजिक एंड फीलिंग्स। जितने हमारे इस मनुष्य जीवन में हम निर्णय लेते हैं या चयन करते हैं कि मुझे ये करना है ये नहीं करना है, ये किस पर बेस्ड होता है, ये चार चीजें, इनमें से कोई एक, कोई दो, कोई तीन या फिर पूरे चार। अब देखिए सबसे पहला है ट्रेडिशंस, जो कि हमारे पास्ट से संबंधित है। वो हम यदि किसी एक खानदान में पैदा हुए हैं तो एक खानदानी रस्म होती है ना। जैसे कि मान लो कि कोई महाराष्ट्र में पैदा हुआ है तो महाराष्ट्रियन एक खानदानी रस्म होती है। उसके अंदर भी कितने फैक्शंस हैं कि कोई अगर मराठा है, कोई अगर कोंकणस्थ ब्राह्मण है, कोई अगर कौन से समाज का है, माली समाज का है, अलग अलग समाज के, उनके अलग अलग, उनके विशेष उस फैमिली के एक खानदानी रस्म होगी। जैसे मैंने देखा, अब जैसे साउथ में आप जाओ, साउथ में वो बोलने का ढंग, एड्रेस करने का ढंग, जैसे कि अगर घर पर कोई बड़े हैं तो उनको क्या बुलाते हैं वो, अब जैसे यहां पर देखो, यहां काका बोलते हैं ना, अंकल को काका बोलते हैं। अब साउथ में जाओ वहां पर कौवे को बोलते हैं, तो अभी अगर साउथ में आप जाके अंकल को काका काका बोलोगे तो वहां पर उनके ट्रेडिशन अलग है। जैसे एक साउथ इंडियन फैमिली यूके में, मैं उनके घर पर था, तो अभी उनकी पत्नी, प्रभु जी की जो पत्नी है, वह क्या था कि एक प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और उसमें दोनों आए थे, इंडियंस भी आए थे और ब्रिटिशर्स भी आए थे। तो होता है ना कि हर एक जगह पर पत्नी अपने पति को कैसे एड्रेस करती है, जैसे यहां पर कैसे करती है, आहो ऐसे बोलती है ना, आहो ऐकतात का, ऐकल का, आहो आहो बोलती। नॉर्थ में आप जाओ, एजी एजी सुनते हो, एजी सुना, और वो भी अपने पत्नी को जैसे कि पप्पू की मां, डायरेक्टली नाम से नहीं बुलाती, पप्पू की मां बुलाएगी। मेरे को क्वेश्चन था पप्पू होने से पहले क्या बुलाते, पता नहीं अभी तक उसका जवाब मिला नहीं मेरे को, होने वाले पप्पू की मां हो सकता। तो वैसे ही ये फैमिली, तो ये फैमिली इनके साउथ इंडियन, ये तो इनकी वाइफ इनके हस्बैंड को बुला रही थी एनरी, तो मुझे भी पहले समझ में नहीं आया, मैं पहली दफा सुना जैसे आहो एजी, तो साउथ में उनके जो ट्रेडिशन के अनुसार एनरी एनरी वो बुला रही थी अपने हस्बैंड को। तो वहां पर वो जो होस्ट आए थे, सॉरी जो गेस्ट आए थे, तो उसमें से कुछ वो अंग्रेज थे, तो वो जाने के बाद जाते समय बोले वो जो होस्ट थे प्रभु जी थे, उनको बोलते हैं सो थैंक्स मिस्टर हेनरी। तो मैं भी सोचने लगा इनका तो अच्छा खासा दीक्षित नाम है, ये हेनरी क्यों बुला रहे। तो बोले व्हाई यू कॉलिंग मी हेनरी, लाइक योर वाइफ वाज कॉलिंग यू हेनरी हेनरी। तो अभी देखो वो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन के अनुसार हमारे डिसीजंस होते हैं। जैसे कि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे ट्रेडिशंस वो परंपरा में नीचे आते 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 वो बिना किसी लॉजिक के होते हैं। जैसे हम वो कहानी सुनाते हैं ना कि वो एक परिवार में वार्षिक होम पिताजी किया करते थे, तो ये वर्ष उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया वार्षिक होम के लिए और सारी सामग्री तैयारी हो गई, यज्ञ शुरू होने वाला है, पंडित जी अभी मंत्रोच्चारण यज्ञ प्रारंभ करने वाले हैं, एक बिल्ली आ गई कहीं से। तो पिताजी ने कहा नहीं 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 नहीं, बेटे को कहा एक टोकरी लेकर आ। बेटा टोकरी लेकर आता है, बिल्ली के ऊपर पिताजी टोकरी रखते हैं कि ताकि बिल्ली कोई गंदा ना करे। अब पंडित जी को कहते हैं शुरू कीजिए यज्ञ। उस वर्ष पिताजी गुजर जाते हैं, अब बेटे की जिम्मेदारी है, सबसे बड़े बेटे की जिम्मेदारी है कि अगले वर्ष का यज्ञ वो करवाए वार्षिक यज्ञ। तो वो सब याद करके तैयारी करता है पूरे यज्ञ की। फाइनली पंडित जी बैठ जाते हैं, यज्ञ शुरू होने वाला है, रुको बिल्ली लेकर आओ। सब पूछते क्यों, क्यों नहीं पूछने का, पिछले साल पिताजी ने टोकरी भी लेके आओ। तो बिल्ली ढूंढते ढूंढते एक घंटा लगा उनको, बिल्ली लेकर आया, फिर वही एंगल में 30 डिग्रीज एंगल वो यज्ञ कुंड में, उधर बिल्ली को खड़ा कर। बिल्ली भी सोच रही थी क्यों मेरे को लेकर आए। बिल्ली को खड़ा किया, उसके ऊपर टोकरी, अब शुरू करो यज्ञ। तो होता क्या है, कई बार ये ट्रेडिशंस जो हैं, जैसे दो व्यक्ति वो काम करते दिख रहे थे, एक गड्ढा खोद रहा था, उसने गड्ढा खोदा और दूसरा व्यक्ति उसको भर रहा है, ये गड्ढा खोद रहा है ये भर रहा है। एक ने देखा ये चल क्या रहा है, ये एक खोद रहा है दूसरा भर रहा है। तो उसने जाके पूछा भाई क्या चल रहा है तुम दोनों का, क्या चल रहा है, काम कर रहे हैं और क्या। बोले क्या काम कर रहे हो ये, बोले देखो हम लोग तीन मजदूर हैं, हाँ बीच वाला आया नहीं है, इसका काम होता है गड्ढा खोदना, बीच वाले का काम आता है पौधा लगाना, मेरा काम है फिर वापस से मिट्टी डालना। तो वो आया नहीं है, हम हमारा काम कर रहे हैं। कई बार सरकारी काम भी ऐसे ही होते हैं। तो इसमें देखो जो जो किसी खानदान में कुछ चल रहा है, कई बार अंधाधुन बिना कोई प्रश्न पूछे, जैसे मेरा रूम पार्टनर था रहमान, मुसलमान था, तो उसको मैंने धीरे धीरे खिचड़ी खिला खिला के शाकाहारी बनाया। तो मेरे को ये प्रश्न था, ये लोग जब ये जो भी बकरीद वगैरह के समय इतनी बकरियों को काटते, तो मैंने पूछा कि कैसे, मतलब घर पे तुम लोग बकरियों को बांध के रखते हो और है ना, ऐसा निर्जीव प्राणी है वो। तो मुझे, मैं आश्चर्यचकित रह गया, इसने कहा कि मेरी मां काटती है उस बकरी को, तो जिंदा बकरी को घर में, मतलब वो बाहर से भी नहीं लाते थे, वो जिंदा बकरी को घर में काटती थी मां। मैंने कहा कि एक एक मां है, वो एक स्त्री है, उसके अंदर करुणा इतनी भरी होती है, वो कैसे वो तड़पते हुए प्राणी को, खून उसमें से बह रहा है, तो पता है इसने क्या कहा? इसने कहा तुम्हारी मां जब पालक काटती है तो उसको कुछ होता है क्या? मैंने कहा ये क्या लॉजिक है? मतलब उसके लिए बकरी का गला काटना और पालक काटना एक समान है। तो देखो कई बार ट्रेडिशंस किसी को इतना अंधा बना देता है कि कोई लॉजिक भी नहीं लगा पा रहा है उसके अंदर। जैसे मुझे याद है बहुत साल पहले राधा गोपीनाथ मंदिर में राधानाथ महाराज दीक्षा दे रहे थे, तो एक माताजी बहुत एल्डरली, मेरे ख्याल से वो 75 प्लस होंगी, और वो किसी गांव की थी, नववारी साड़ी पहनी हुई और बड़े बड़े कड़े और यहां पर बड़ा बड़ा वो क्या बोलते हैं नथनी बड़ी बड़ी, और तो ऐसे वो एकदम गांव की ट्रेडिशनल महिला, डेफिनेटली उसको कोई अंग्रेजी नहीं आती, और वो महाराज से दीक्षा लेने के लिए, अभी वाउज बोलने ना दीक्षा के, तो अभी ये नियम था कि जो जिस भाषा में बोल सकता है वो वाउज उस भाषा में ले, तो इन्होंने मराठी में अभी वाउज बोलना, मुझे अभी भी याद है, तो अभी वो इतनी ओल्ड, उनको वो वाउज भी लेना है इतना अजीब लग रहा था उनके मुंह से वो वाउज सुनना भी, चार नियम, तो बोल रही थी अम्मी मांसाहार करना नहीं, फिर रुक गए, भूल गई वो, तो फिर उधर जो प्रभु जी खड़े हुए थे उन्होंने उनको प्रॉम्प्ट किया, माता जी दूसरा दूसरा भाव, तो पूछ रही कौनता है तो ये बोले कि मी नशा दारू पीना नहीं, कहीं करना नहीं, तो हाँ मी नशा नहीं करना, दारू नहीं पीना, ऐसे अभी उसके भी अजीब लग रहा था, इतनी ट्रेडिशनल लेडी है वो, क्या क्या बोल रही फिर मी अवैध संग करना नहीं, फिर वो चौथा तो आज याद ही नहीं आ रहा था उसको, तो फिर वो जो प्रभु जी बोले मी जुगार खेलना नहीं, तो ये उस प्रभु जी को बोले मी या वाय जुगार खेलना वो चिड़ गई वो उसके प्रभु जी के ऊपर, तो प्रभु जी भी डर गए, महाराज भी डर गए, क्या हो गया? तो कई बार ये जो ट्रेडिशंस होते हैं, ये ट्रेडिशंस जो हैं, हां ये कुछ हद तक सही हैं हमारे जीवन में, लेकिन कई बार अगर उसके अंदर हमने लॉजिक नहीं लगाया तो उसको हिंदी में जो कहते हैं ना दक्यानुसी, वो दक्यानुसी ख्यालात के जिसको बोलते हैं विचारधारा के, वैसे हो जाते हैं। तो ये है ट्रेडिशन। अब जो नेक्स्ट है कल्चर, कल्चर मतलब जो अभी प्रेजेंट है, जैसे कि आप देखो कि प्रेजेंट कल्चर के अनुसार लोग अपने बच्चों का नाम प्रेजेंट कल्चर के अनुसार रखते हैं। जैसे मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था बास्केटबॉल प्लेयर, उसको उसके माता पिता ने इतना अच्छा नाम रखा था श्याम, लेकिन उसको प्रेजेंट कल्चर के अनुसार वो श्याम नाम अच्छा नहीं लगा, उसने चेंज कर दिया, सैम, श्याम का सैम बन गया। तो प्रेजेंट कल्चर के अनुसार नाम, फिर पहनावा, प्रेजेंट कल्चर के अनुसार खान पान, प्रेजेंट कल्चर के अनुसार एजुकेशन, करियर। अभी देखो पहले मुझे याद है कि मेरे पिताजी बड़े फख्र से बोलते थे कि हम लोग पंडित परिवार से हैं, पूजा पाठ करते हैं। अभी आजकल जो आधुनिक जो युवा वर्ग के हैं वो अगर उसी परिवार के हैं, मुझे याद है कि मैं वहां पर कॉलेज में प्रीचिंग करता था, जब मैं पूछता था कि आपके फादर क्या करते हैं, तो विद्यार्थी वहां इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनको शर्म आती थी बोलने के लिए कि मेरे पिताजी किसान है। मैंने कहा शर्म क्यों आती है? अरे वो खुद की खेती कर रहे हैं, खुद का अनाज उगाया हुआ खा रहे हैं, इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, उसके लिए तुमको फक्र होना चाहिए, तुम शर्म क्यों कर रहे हो? तो देखो कल्चर वो प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार वो बदलता है। अब लॉजिक, देखो लॉजिक हम लोग बहुत से हमारे निर्णय लॉजिक पर लेते हैं। जैसे आपने आपको अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उसमें आप ट्रेडिशन और कल्चर और फीलिंग्स पे इतना नहीं जाओगे, क्या देखोगे, दिमाग लगाओगे। जैसे कि मान लो दही, अभी दही के ऊपर क्या लिखा होता है, एक्सपायरी डेट, 3 दिन में खा लीजिए इसको, है ना। और उस दही को आप फ्रिज में रखते हो, फ्रिज भी जो आपने खरीदा है, मान लो कि फ्रिज के ऊपर लिखा हुआ है 3 दिन में यूज कर लो, किसको, फ्रिज की वारंटी कितनी होती है, कई साल होगी, दही की वारंटी कितनी है, 3 दिन की है। तो इसके अंदर आप लॉजिक लगाते हो कि 3 दिन की वारंटी का जो आइटम है उसको कितने पैसे देने चाहिए और 30 साल जो चलने वाला आइटम है उसको कितने पैसे देने चाहिए। यहां पर आप फीलिंग्स पे नहीं जाओगे, यहां पर क्या लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। परंतु ये जो लास्ट है ना, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, फीलिंग्स की। फीलिंग्स के चलते हम जो डिसीजंस लेते हैं, कैसे, मुझे ये अच्छा लगा, तो फिर न तो लॉजिक काम आता है, न कोई कल्चर काम आता है, न कोई ट्रेडिशन काम आता है, ये फीलिंग सबसे ऊपर आ जाता है, इसलिए इसको लास्ट में रखा हमने। जैसे कि प्रभुपाद ये कहानी सुनाया करते थे, एक अरब शेख था, बड़ा उसका आलीशान महल जिसके अंदर वो रहता था, तो ऐसे ही झूमर था बीच में, बड़ा झूमर था, तो उसका नौकर वो झूमर साफ कर रहा था और ये अंदर हुक्का पी रहा था, दूसरे कमरे में हुक्का पी रहा था ये, तो ये क्रिस्टल ना, एक क्रिस्टल गिर गया, साफ करते करते क्रिस्टल ऐसे टिंग 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 करके नीचे फर्श पे गिरा, हुक्का छोड़ा और अब भागते हुए बाहर आया ये शेख। अब ये बेचारा नौकर थर थर कांप रहा है कि ये तो अब मुझे हलाल करेगा, तो पूछा क्या थी वो आवाज, क्या ही, उसने कहा कि वो क्रिस्टल गिर गया साफ करते करते, ये झूमर का, हाँ जा ऊपर चढ़, एक और गिरा। तो वो आश्चर्यचकित हो गया, वो गया ऊपर, उसने एक और गिराया, वैसी ही आवाज आई, उसने कहा एक और गिरा, ऐसे करके उसके जितने क्रिस्टल थे सारे गिरवाए, क्यों, अच्छी लगी आवाज, सारे टूट गए वो। तो प्रभुपाद ये कहानी सुनाया करते थे कि कई बार लोग जो हैं अपने फीलिंग्स के चलते किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे अच्छा लगा उसके पीछे, जैसे कि लोग ये सिनेमा देखने जाते हैं, अब देखो सिनेमा देखने गए वहां पर कोई लॉजिक से सिनेमा नहीं देखता है, क्योंकि उसको आपको बाहर छोड़ के आना पड़ता है, लॉजिक को बाहर पार्क कर रहे हैं। कोई सुपरमैन की मूवी देखने गया है, हाँ सब लोग बैठे हैं, ज्यादा ज्यादा ब्लैक टिकट ले लेके सुपरमैन की मूवी देखने गया और सबको पता है कि ये मूवी में क्या दिखाने वाले हैं। मान लो कि वो मूवी में सुपरमैन उड़ ही नहीं पाया तो वो लोग क्या बोलेंगे, अरे पैसे बर्बाद हो गए, सुपरमैन उड़ता ही नहीं है, अरे सब कुछ करना चाहिए उसको, कुछ भी कर सकता है ना, सुपरमैन है। तो मैं हाल ही में ना क्वेश्चन पूछ रहा था, तुम सुपरमैन की मूवी देखते हो, बच्चों को सुपरमैन की मूवी देखते हो, क्या लॉजिक है उसके अंदर, कुछ लॉजिक कभी दिमाग लगाया उसके अंदर, कोई लॉजिक है, अंडरवेयर तो ऊपर पहनता हो, कोई लॉजिक है उसमें, कभी देखा है किसी कल्चर्ड इंसान को देखा है वो करते हुए, पैंट के ऊपर कच्छा पहन रखा है उसने। तो अगर वो थिएटर में कोई लॉजिक लगाने लग जाए, क्या लॉजिक लगाने लग जाए, ए ऐसे कैसे उड़ सकता है, ए बिल्डिंग से इधर, स्पाइडरमैन मकड़ी आदमी, हाँ ये कैसे यहां से वहां जा सकता है, नहीं, तो उसको सब लोग बाहर निकालें, तू बाहर जा, क्योंकि उसको एंजॉय करने के लिए उनको फीलिंग्स अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपको कोई रसगुल्ला दिखाने के लिए और फिर मीडिया वाले आ जाए माइक लेके, कैमरामैन लेके आ जाए पूछने के लिए, तो आपको कैसा लगा रसगुल्ला, आपने पहले गुल्ला खाया कि पहले रस को पिया। तो आप ठीक ठीक बताइए कि एग्जैक्टली जब रसगुल्ला आपने मुंह में डाला, पूरा पूरा डाला, पूरा घटक लिया, कि उसको आधा आधा करके कांटे से चाकू से खाया, आप कैसा महसूस करेंगे? अरे जा यार, अच्छी फीलिंग्स आ रही है खाने की। नहीं नहीं, पहले बताइए कि आपने वो रसगुल्ला राइट साइड से चबाया कि लेफ्ट साइड से चबाया, कौन से साइड से पहले चबाया? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं उसका। तो ये जो बात है ना फीलिंग्स की, जैसे कि मुझे जब पहली दफा पूछा गया कि ये तू धोती क्यों पहनता है, तो जिसने पूछा था मैं जानता था कि वो क्या किस दिशा में इस आर्ग्यूमेंट को ले जा रहा, तो उसका इंटेंशन ये था कि मैं स्पिरिचुअल रीजन दूंगा कि ये साधु का पहनावा है, तो बोले क्या ये तो सब दिखावा है इसको। तो वे पूछा तू धोती धोती क्यों पहनता है, मैंने कहा आरामदायक है, एसी इफेक्ट है। अभी कोई लॉजिक है इसके पीछे कि कोई वो जीन्स क्यों पहनता है? अभी देखो वो जीन्स ही 3-4 किलो की बोरी, फिर उसको फाड़ लेते हैं आजकल, उसके पीछे क्या लॉजिक है? फटे हुए जीन्स पहनते हैं। मैंने देखा, मैंने एक्चुअली देखा वीजा ऑफिस के सामने, मैंने देखा एक लड़की वो फटे हुए जीन्स पहनी हुई है और एक भिखारी उसे भीख मांग रहा है। ये सीन इमेजिन करो, ये सीन इमेजिन करो, भिखारी वो भी फटे हुए कपड़े पहना है और वो इस लड़की से भीख मांग रहा है, मेम साहब कुछ पैसे दे दो। और उसने देखा इसके सारे फटे हुए कपड़े हैं, शक्ल तो ठीक दिख रही है, इसके फटे हुए कपड़े। तो मैं ये सीन को देख रहा था, वो डाउट में था इससे मांगू कि नहीं मांगू कि इसको थोड़े पैसे दे दो सिलवा लेना। तो देखिए जब फीलिंग्स की बात आती है तो सारे हमारे लॉजिक कल्चर ट्रेडिशंस वो सब पसंद आया। जो पियक्कड़ होते हैं वो कोई लॉजिक लगा के पीते नहीं है कि एक पैग तूने लगाया एक पैग मैंने लगाया। अभी इसका देखो जो मिलीमीटर डाला है हमने अंदर पैग बनाया है उसका नशा कितने क्वांटिटी में कब हमारे अंदर आएगा कब तक रहेगा पहले इसको हम लोग गणित लिखते हैं इसका। नहीं अरे पियो, हाँ उसके बाद में जो होता है वो उनकी फीलिंग्स है। इसलिए भगवद गीता, अब आप प्रश्न पूछेंगे कि क्या भगवद गीता में ये चारों चीजें मेंशन्ड हैं? क्या ये चारों चीजें क्या ये जायज हैं? यस, भगवद गीता में चारों मेंशन्ड है। जैसे कि भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम, ट्रेडिशनली ये ज्ञान आ रहा है, सो ट्रेडिशन है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन प्रेजेंट तेरा कल्चर क्या है, तू क्षत्रिय है और तू यदि रणभूमि से पलायन कर जाएगा तो तेरे को कायर कहेंगे, तेरा जो प्रेजेंट कल्चर है उसको निभा तू। सो भगवत गीता हैज ट्रेडिशन, भगवत गीता हैज अ प्रेजेंट कल्चर, भगवत गीता हैज सो मच लॉजिक इन इट। अगर वो हम लोग लेने जाएं, लॉजिक को लेने जाएं, जो भगवान ने देहात्म बुद्धि का लॉजिक प्रेजेंट किया अर्जुन को सेकंड चैप्टर में कि तू शरीर नहीं आत्मा और कैसे है तू, ये सारा लॉजिक आप पढ़ोगे तो कोई नास्तिक व्यक्ति भी उसके पास कोई तोड़ नहीं है उस लॉजिक का। और फाइनली फीलिंग्स, भगवान अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध चा कि तू युद्ध लड़ बत किस चेतना में युद्ध लड़, मेरे प्रति फीलिंग्स, मेरे प्रति फीलिंग्स रखते हुए तू युद्ध लड़। तो यहां पर भगवान अर्जुन को चारों चीजें दे रहे हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। वो एक श्लोक है जिसके अंदर 9.2 भगवान ने ये सारी चीजें दे दी हैं, ट्रेडिशन कल्चर लॉजिक फीलिंग्स उस एक श्लोक के अंदर। इसलिए जब हम ये नहीं कह रहे कर्म का नियम ये नहीं है कि आप डिसीजन इस पे बेस्ड मत लो, लेकिन जब लेने वाले हो, हम हर समय किसी ना किसी एक क्राइटेरियन में डिसीजंस लेते हैं, तो कहा गया है क्यों ना भगवत गीता में ये चारों चीजों को पाओ, व्हाई नॉट फाइंड ऑल दीज फोर इन दी भगवत गीता एंड मेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट वन स्क्रिप्चर। तो एक्सपीरियंस, फीलिंग्स जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हम उसको प्रस्थापित किए हैं, तो हमारे अनुभव से हमको फीलिंग्स आती है। तो यहां पर ये सीक्वेंस है, भगवत गीता गिव्स अस एक्सपीरियंस एंड दैट एक्सपीरियंस गिव्स अस फीलिंग्स। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, थोड़ा सा ये आधे घंटे का है, ये हमारे राधा गोपीनाथ मीडिया सर्विसेज ने बनाया है। रिसेंटली जो राधा गोपीनाथ का ब्रह्मोत्सव हुआ, तो उस ब्रह्मोत्सव में उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया, बहुत ही सुंदर वीडियो है, जिसमें आज हम जिस मुद्दे पर हमारे प्रवचन को विराम दे रहे हैं उस पर यह आधारित है, एक्सपीरियंस विच ब्रिंग्स अबाउट फीलिंग्स। तो जो राधानाथ महाराज ने इतने वर्षों पहले, ये जो राधा गोपीनाथ भक्त समाज उनकी यात्रा जो महाराज ने प्रारंभ करी, और हर साल हम देखते हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उसका मैनेजमेंट, उसका फ्लेवर सब कुछ प्रोग्रेसिव ग्राफ पर है। तो ये उन्होंने एक सुंदर वीडियो बनाया है, गिविंग द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इन दीज धाम्स, क्योंकि यहां पर भी अभी अनाउंसमेंट शुरू हो गए हैं हमारे इस साल के अपकमिंग यात्रा के, तो ये काफी आप लोगों को प्रेरणा देने के लायक ये वीडियो है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे सैटेलाइट सेंटर्स में हम, जो इन्होंने इतना सुंदर वीडियो बनाया उसको हम ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करें, तो इसलिए आप लोग सब दिल थाम के और एंजॉय कीजिए ये सुंदर वीडियो, विच विल गिव यू एटलीस्ट राइट नाउ सम एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इज अ ग्लिम्स इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड।